कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम बाइबल की 12वीं पुस्तक दूसरा राजा नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे इन अध्ययनों से अवश्य आत्मिक लाभ प्राप्त हो रहा होगा। परमेश्वर की आशीषों को हमारे साथ बांटिए और प्रार्थना के साथ सुनते रहिए सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा आप निश्चय ही अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 6 से अपने अध्ययन को आरम्भ करेंगे। लेकिन हम इस बात को देखें कि पिछले अध्ययन में हमने नामान के घमंड के बारे में देखा था और हमने यह देखा कि परमेश्वर ने उसे किस रीति से चंगाई प्रदान की। तब हमने यह भी देखा कि एलिशा का सेवक गेहजी लालच के कारण पाप में गिरा और वह कोढ़ी ग्रस्त हो गया। आज हम आगे देखेंगे अध्याय 6 में कुल्हाड़ी का पानी पर तैरना और दोतान पर संकट। मेरे मित्रों, अध्याय 6 में हम दो और रोचक घटनाओं को देखेंगे जो एलिशा के द्वारा घटी। यद्यपि एलिशा एलिया से भिन्न था, वह एक असाधारण भविष्यद्वक्ता था। एलिया की सेवा सार्वजनिक थी जबकि एलिशा की सेवा व्यक्तिगत थी। हमने नामान की कहानी में इसे देखा है। एलिया दर्शनीय काम करता था और आग बरसवाना, वर्षा करवाना। एलिशा भी एक विशिष्ट जन था, परंतु वह सुर्खियों में नहीं रहना चाहता था। तथापि दोनों भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के जन थे और परमेश्वर के नियत समय में उभरे थे। आइए हम देखें कुल्हाड़ी के विषय में। अब हमारा ध्यान एलिशा पर होगा। मेरे विचार में कुल्हाड़ी तैरने का जो चमत्कार था, उसके तुल्य अन्य कोई भी चमत्कार किसी मनुष्य या भविष्यद्वक्ता के चरित्र को प्रकट नहीं करता है। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय उसके 1 पद में पढ़ते हैं, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलिशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए सकेत है। मेरे प्रियो, इस पद में एलिशा की ख्याति के विषय जानकारी मिलती है। वह भविष्यद्वक्ताओं की पाठशाला में पढ़ाता था। विद्यालय में विद्यार्थी की संख्या बढ़ रही थी और उन्हें अधिक आवासों की आवश्यकता थी। तब एलिशा की ख्याति के कारण जो कुछ भी हुआ हम देखते हैं। मेरे विचार में किसी भी पाठशाला की विद्यार्थी संख्या और नाम वहाँ के शिक्षकों के चरित्र और योग्यता पर निर्भर करते हैं। पाठशाला का विधि विधान नहीं, मनुष्य महत्वपूर्ण होते हैं, विशेष करके मसीही स्कूलों में। देखिए उन्होंने क्या किया। पाठशाला का विस्तार करने के लिए उन्होंने कहा, तब हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय के 2 पद में लिखा है, इसलिए हम यर्दन पार जाएं और वहां से एक एक बलि लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। विद्यार्थियों ने स्वयं ही पाठशाला का विस्तार किया। आज यह बात बड़ी विचित्र प्रतीत होती है। आज तो विद्यार्थियों को स्कूल में लाने के लिए उनके लिए सब कुछ करना पड़ता है और यदि उन्हें प्रबंध अच्छा न लगे तो वे विद्रोह करते हैं। परंतु एलिशा के विद्यार्थी परिश्रम करने वाले निकले और एलिशा ने उन्हें प्रोत्साहित भी किया। दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय के 3 पद में हम आगे पढ़ते हैं, तब किसी ने कहा, अपने दासों के संग चलने को प्रसन्न हो। उसने कहा, चलता हूँ। मित्रों, यह पद बड़ी शांति देने वाला पद है। यह एलिशा के मोहक चरित्र में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इससे ज्ञात होता है कि विद्यार्थी उससे लगाव रखते थे। आज क्या विद्यार्थी अपने शिक्षक को परिसर से बाहर साथ ले जाना चाहते हैं? जी नहीं, वे तो उसे वहीं छोड़ देना चाहते हैं। परंतु एलिशा के विद्यार्थियों ने उसे साथ ले जाना चाहा। दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय के 4 पद में लिखा है, तो वह उनके संग चला और वे यर्दन के तीर पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। अब एक छोटी सी दुर्घटना घटती है। मैं छोटी सी दुर्घटना कहता हूँ क्योंकि आम मनुष्य के लिए यह एक छोटी सी ही बात है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, परंतु जब वो एक जन बलि काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंत से निकलकर जल में गिर गई। सो वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मंगनी की थी। मित्रों, यह बड़ी ही ध्यान देने योग्य बात है। परमेश्वर हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है। आपको पौलुस द्वारा फिलिपी की कलीसिया को दिया गया निर्देश स्मरण होगा, हर बात में प्रार्थना करो। उसके कहने का अर्थ था कि प्रार्थना में कुछ न छूट जाए। हमारे लिए तो कुल्हाड़ी का गिर जाना अर्थ नहीं रखता है, परंतु उस गरीब विद्यार्थी के लिए वह एक बड़ी बात थी। मित्रों, आज के आधुनिक उपकरणों के सामने कुल्हाड़ी का महत्व नहीं है, परंतु उस युग में उसका बहुत ही महत्व था, क्योंकि लोहे का उपकरण या हथियार एक असामान्य वस्तु थी। उस युग के बारे में जानने के लिए पहला सामुएल की पुस्तक 13 अध्याय उसके 22 पद को पढ़ें। युद्ध के दिन शाऊल और योनातान के साथियों में से किसी के पास न तो तलवार थी और न भाला, वे केवल शाऊल और उसके पुत्र योनातान के पास थे। मेरे मित्रों, संपूर्ण सेना में केवल 2 तलवारें। इससे समझ में आता है कि उस युग में औजारों की कैसी घटी थी। अब आप समझ सकते हैं कि कुल्हाड़ी पानी में गिर जाना उस विद्यार्थी के लिए कितनी बड़ी हानि थी, और फिर उसने उसे किसी से मांगा था। मेरे प्रियो, अधिकांश टीकाकार इस विद्यार्थी पर दोष लगाते हैं कि वह लापरवाह था, वह किसी से मांगकर कुल्हाड़ी क्यों लाया आदि आदि। यदि ऐसा ही था तो एलिशा उसके शिक्षक ने उसे झिड़का क्यों नहीं? मेरे प्रियो, एलिशा ने ऐसा नहीं किया। एलिशा ने उसे सब दोषों से मुक्त किया। वह लापरवाह नहीं, अत्यधिक सावधान था। कुल्हाड़ी का बेंत से निकल जाना स्वाभाविक है, और यही कारण था कि परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था में कहा, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 19 अध्याय उसके 4 और 5 पद में, कोई किसी के संग जंगल में लकड़ी काटने जाए और वृक्ष काटने को कुल्हाड़ी हाथ से उठाए और कुल्हाड़ी बेंत से निकलकर उस भाई को ऐसी लगे कि वह मर जाए, तो वह उन नगरों में से किसी में भाग कर जीवित रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने व्यवस्था में यह नियम दिया था क्योंकि ऐसा होना एक आम घटना थी, अर्थात स्वाभाविक था। यह विद्यार्थी अपनी सावधानी का प्रमाण देता है कि लकड़ी काटते समय वह अपने साथ किसी को नहीं ले गया था। वह इस प्रकार खड़ा होकर लकड़ी काट रहा था कि यदि कुल्हाड़ी बेंत से निकल जाए तो वह यर्दन में गिरे। वह अति सुरक्षित दिशा में कुल्हाड़ी चला रहा था, परंतु अब वे उसकी दूसरी भूल यह बताते हैं कि वह कुल्हाड़ी मांग कर लाया था। मित्रों, मेरे विचार में मैं इस व्यक्ति के पक्ष में कुछ कहने योग्य हूँ। वह एक गरीब विद्यार्थी था और उस युग के अनुसार वह उसे खरीदने योग्य भी नहीं था। जैसे कि आज मैं एक कीमती कार को खरीदने की योग्य नहीं हूँ, अतः उसने किसी से कुल्हाड़ी मांगी। मेरे विचार में इन दो क्षेत्रों में इस विद्यार्थी पर आरोप लगाना उचित नहीं है। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, उस विद्यार्थी को किसने वह पुरानी कुल्हाड़ी दी जो बेंत से निकल जाती थी? मैं उसी से कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे विचार में यह वही व्यक्ति है जो आज सेवकों को पुराने कपड़े और पुराने क्रिसमस कार्ड देकर सोचते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की सेवा की है। वह विद्यार्थी अब चिंतित था क्योंकि वह कुल्हाड़ी की कीमत नहीं चुका सकता था। बिना कुल्हाड़ी वह उसके पास कैसे जाएगा? वह नहीं जानता था कि वह क्या करे। अब एलिशा की चिंता पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर के भक्त एलिशा ने पूछा, वह कहाँ गिरी? हम यहाँ रुककर आलोचकों के प्रश्न पर ध्यान देंगे। एलिशा ने यह प्रश्न क्यों पूछा? यदि वह परमेश्वर का जन था तो स्वयं जान लेता कि वह कुल्हाड़ी कहाँ गिरी है। जी हाँ, वह जानता था, और वह एक बात और जानता था। वह जानता था कि उसे उस विद्यार्थी को परखने की आवश्यकता है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसे परखने की आवश्यकता थी। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वह विद्यार्थी जानता था कि कुल्हाड़ी पानी में ठीक किस स्थान पर गिरी है। वह लापरवाह नहीं था। एलिशा ने उसे परखने के लिए ही नहीं, एक और कारण से उसे पूछा। परमेश्वर का आत्मा जानता था कि 21वीं शताब्दी में इस चमत्कार के आलोचक होंगे, और जब वे अन्य सब चमत्कारों की तार्किक व्याख्या करेंगे तो कहेंगे कि निर्मल पानी में वह कुल्हाड़ी दिखाई दे रही होगी। एलिशा का प्रश्न स्वच्छ पानी के तर्क का निराकरण करता है। यदि आप यर्दन के बारे में जानकारी रखते हैं तो स्वयं ही समझ जाएंगे कि उसका पानी मटमैला है। मेरे मित्रों, मैंने उस नदी के बारे में अनेक अद्भुत एवं रोमांचक कहानियां सुनी है, परंतु मेरे लिए तो वह निराशा का ही कारण हुई। आप प्रदूषित जल की बात करें, आप मटमैले पानी की बात करें, आप किसी गंदी जल धारा की बात करें, वह यर्दन है। क्योंकि पानी गंदा था, इसलिए एलिशा ने पूछा, वह कहाँ गिरी? वह विद्यार्थी जानता था कि वह कहाँ गिरी थी, परंतु निकाल नहीं पाया क्योंकि पानी गंदा था, पानी निर्मल नहीं था। देखिए क्या हुआ। दूसरे राजा की पुस्तक 6 अध्याय के 6 पद में, परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। मेरे प्रियो, यह तो निश्चय ही चमत्कार था और इसकी कोई तार्किक व्याख्या नहीं की जा सकती है। यह चमत्कार ना तो रोमांचकारी है ना ही अग्नि रथ में स्वर्ग रोहन जैसा है, और यह अपनी सरलता में ही महान है। लोहा पानी पर तैरेगा तो वह चमत्कार ही होगा, वह भौतिक नियमों के सर्वथा विपरीत है। मैं इसे उस समय से मानता हूं जब से पानी के जहाज लोहे के बने हैं। मित्रों, आज सातों समुद्र पर लोहे के जहाज ही तो तैर रहे हैं। यह तो चमत्कार नहीं है, परंतु कुल्हाड़ी का यर्दन के तल पर तैरना, लकड़ी की समान सतह पर आ जाना वास्तव में एक चमत्कार ही था। मित्रों, मैं जानता हूं कि यह चकित करने वाला रोमांचक काम नहीं है, यह एक अज्ञात घटना है। यह एलिशा की रीति थी। एलिया होता तो इस रीति से नहीं करता। मेरे विचार में एलिया होता तो संभवतः इसकी चिंता भी नहीं करता, वह पुत्र छोड़ उसे जाने देता। एलिशा ऐसा नहीं था। यर्दन के तल के शिथिल पड़ी कुल्हाड़ी ऊपर आई और आप कह सकते हैं उसका पुनरुत्थान हुआ। जी हाँ, स्वामी को सौंपी गई, बेंत में लगाई गई, फिर उपयोगी बनी। उपयोगितावाद और क्रियाशीलता यह वास्तव में एक महानतम चमत्कार है, क्योंकि इसमें हमारे लिए एक महान आत्मिक शिक्षा है। आज मनुष्य उस कुल्हाड़ी की नाई है, वह बेंत से निकल गया है, वह पतित हुआ है, वह पूरा का पूरा भ्रष्ट है। परमेश्वर चाहता है कि वह अपने स्थान पर आ जाए। एलिशा ने एक लकड़ी काटी, उसने उसे मृत्यु के जल में डाला। यह लकड़ी मसीह का क्रूस है। हमारा मसीह उस क्रूस पर आया और आपके और मेरे लिए मृत्यु के पानी में गया। पत्रस की पहली पत्री अध्याय 2 उसके 24 पद में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। मेरे मित्रों, मनुष्य मृत्यु के जल और दंड से बच सकता है, परंतु सिर्फ मसीह के क्रूस के द्वारा। वह परमेश्वर की योजना और उद्देश्य के बेंत में फिर से लगाया जाएगा, अर्थात लगाया जा सकता है और परमेश्वर के प्रयोजन में सुव्यवस्थित हो सकता है। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 उसके 13 पद में पौलुस गवाही देता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जी हाँ, किसी को भी निरुद्देश्य एवं निरर्थक जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। निरुद्देश्य जीवन हजारों मनुष्यों को आत्महत्या करने पर बाध्य कर रहा है। अधिकतर आत्महत्याओं का कारण यही ज्ञात होता है, जीने से कोई लाभ नहीं। मेरे मित्रों, यह सत्य है कि जीने से कोई लाभ नहीं। जब तक कि आप गंदे पानी के नीचे एक पुरानी कुल्हाड़ी बने पड़े रहेंगे, तब तक आपका जीवन ऐसा ही होगा। जब तक कि मसीह यीशु आपको अपने क्रूस के द्वारा उबार कर आपको और मुझे अपनी मृत्यु द्वारा अपनी योजना और उद्देश्य के समृद्ध न कर दे, तब ही जीवन किसी काम का होता है। एक 21 वर्ष से कम के युवक ने मुझसे कहा, मेरा जीवन असफल है। मैंने उससे कहा, आपका जीवन तो आरंभ ही नहीं हुआ है और आप असफल होने की बात करते हैं। मेरे प्रियो, हमें आज परमेश्वर की आवश्यकता है। आज का सबसे बड़ा चमत्कार चांद पर जाना नहीं है, अग्नि रथ में स्वर्ग रोहन भी चमत्कार नहीं है, अपितु यह है कि पापी रहते हुए मसीह में विश्वास करके सर्वोच्च स्वर्ग में प्रवेश करना है। सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि इस संसार के कीचड़ से उभर कर जीवन का अर्थ पाए और परमेश्वर के लिए जीवन बिताए। दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय के 7 पद में लिखा है, उसने कहा उसे उठा ले, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। मित्रों, आपको जो करना है वह यह है कि आज विश्वास का हाथ बढ़ाएं और उसे ले लें, क्योंकि वह आपके लिए मरा है। वह फिर जी उठा कि आपको उबारे, आपको छुटकारा दे, आपको अपने स्थान से विश्वास का हाथ बढ़ाकर उसमें विश्वास करना है। हम आगे देखते हैं दोतान का संकट। मित्रों, अगली घटना बड़े ही परिचित स्वर में आरंभ होती है और ऐसा प्रतीत होता है कि समाचार पत्र की सुर्खियां सामने हैं। आराम के राजा का इसराइल पर आक्रमण। वे तो इस अवसर की खोज में बहुत पहले ही से थे और यह वास्तव में पुरानी रंजिश है। इसराइल और अरब में वर्तमान प्रतिद्वंद में बाइबल की पृष्ठभूमि है। अब स्थिति पर ध्यान दें। दूसरी राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय उसके 8 से 11 पद में, और आराम का राजा इसराइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा कि अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इसराइल के राजा के पास कहला भेजा कि चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहां आरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इसराइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था भेजकर अपनी रक्षा की और इस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार बचा। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। सो उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इसराइल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। मेरे मित्रों, आराम का राजा परेशान था कि उसकी हर एक योजना और हर एक गतिविधि इसराइल के राजा को पता चल जाती है। अतः उसने यह निष्कर्ष निकाला कि उनमें से कोई तो है जो इसराइल के साथ मिल गया है। उसने सेना बुलाई और देशद्रोही को पकड़ना चाहा, तुम में से कौन इसराइल के राजा का भेदी है? सच तो यह है कि ऐसा कोई भी नहीं था, वे सब उसके निष्ठावान थे। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ते हैं, एलिशा जो इसराइल में भविष्यद्वक्ता है वह इसराइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। मित्रों ध्यान दीजिए, एलिशा आराम के शयन कक्ष में भी पहुंच जाता था और उसके सब भेद जान लेता था। राजा के शयन कक्ष में हो रही बातें जानने का एक ही मार्ग था, परमेश्वर उस पर प्रकट करता था। मेरे प्रियो, इस कारण आराम का राजा एलिशा को घात करना चाहता था। उसने भेदिये भेजकर पता लगाया कि वह दोतान में है या नहीं। दोतान यरूशलेम के उत्तर में 60 मील की दूरी पर था। दोतान का अर्थ है दो कुएं। वह चारागाह भी अच्छे अच्छे थे, वहां पशु चराने के लिए लाए जाते थे। आज अनेक वर्षों से व्हीटन कॉलेज के डॉक्टर जोसेफ फ्री वहां खुदाई अभियान में लगे हैं। मुझे बताया गया है कि वहां पर्यटकों के लिए देखने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह कोई विशेष स्थान नहीं था। इस समय वह एलिशा का मुख्यालय था। आराम का राजा सेना भेजकर उस स्थान को घेर लेता है। एलिशा का सेवक संभवतः सुबह कुएं पर पानी भरने को गया, कुआं आज भी वहां पर पाया जाता है, तो देखा कि वह नगर आरामी सेना द्वारा घिरा हुआ है। आप जान लीजिए कि वह भयभीत हो गया। उसने घर आते ही एलिशा को समाचार सुनाया, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें, नगर घिर चुका है, अब कोई आशा नहीं रही, ऐसे में हम क्या करें, अब क्या होगा? दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय के 16 पद में लिखा है, उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह अस्वाभाविक सा प्रतीत होता है। यहां सेना खड़ी है और एलिशा अपने सेवक के साथ अकेला है। उसका सेवक तो भय से कांप रहा है। अतः एलिशा ने प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना जो बड़ी रोचक है, दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय के 17 पद में, तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। मेरे मित्रों, अब प्रश्न यह उठता है, क्या यह अपनों के साथ व्यवहार करने के लिए परमेश्वर का नियत नीति है? मित्रों, मैंने तो यही देखा है कि अनेक विश्वासी आज महान निर्वित्ति मार्गी बन गए हैं। वे एक प्रकार से आत्मिक ढोंगी हैं। वे आपको परमेश्वर के उद्धार और मार्गदर्शन के चमत्कार सुना सकते हैं, जबकि अनेक संत सिर झुकाकर लज्जा का अनुभव करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि मुझे तो ऐसा कोई अनुभव प्राप्त नहीं है और न ही परमेश्वर ने मुझे ऐसा कोई मार्गदर्शन प्रदान किया है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि मेरा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है या वह मेरी ओर है ही नहीं। मेरे प्रियो, आइए हम दोतान की ओर चलें। मेरे विचार में इसका उत्तर यहाँ है। बाइबल में दोतान का उल्लेख केवल दो ही बार हुआ है और उसका एक विशेष कारण है। दोतान में एक और मनुष्य आता है, वह एक 17 वर्षीय युवक है। वहाँ उसके लिए संकट एवं नियति प्रतीक्षा में है। वह वास्तव में एक असहाय एवं अशंकालु पशु की नाई जाल की ओर बढ़ रहा है। मेरा मन करता है कि उसे सतर्क करो, दोतान मत जा, परंतु वह मूर्ख जिसे मैंने ढोंगी कहा है वह कहेगा, प्रचारक आपको चिंता नहीं करना है, उसे कोई हानि नहीं होगी, उसे दोतान में क्षति नहीं पहुंचेगी, वह अगले सप्ताह घर आ जाएगा क्योंकि परमेश्वर उसे बचा लेगा। मेरे मित्रों, दोतान तो अंततः अग्नि रथों से घिरा हुआ है, वह तो बह ही जाएगा, परंतु क्या वह बच गया? यूसुफ के भाई उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वे उसकी हत्या करना चाहते थे, परंतु जब वे थोड़ा शांत हुए तब उनमें जो बुद्धिमान भाई था उसने कहा कि उसे बेच दिया जाए। मेरे मित्रों, उस युग में दास रूप में बेचा जाना मृत्यु से अधिक अनर्थकारी था। दासत्व में बेचा जाना जीवन का नरक था। तथापि इस 17 वर्षीय बालक के साथ ऐसा ही हो रहा था, जबकि वह परमेश्वर का जन था। अग्नि रथ कहाँ है? अब क्योंकि आप अग्नि रथ देख नहीं पाते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह है ही नहीं, वे वही हैं। मैं यूसुफ के जीवन में चमत्कारी एलिशा के जीवन की तुलना में यूसुफ के जीवन में परमेश्वर का हाथ अधिक देखता हूँ। तथापि परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन नहीं दिया, उसके लिए कभी चमत्कार नहीं किया, परंतु मैं देख सकता हूँ कि परमेश्वर ने यह आभासी विनाश को काम में लिया और यूसुफ ने भी उसे अपने जीवन के अंत में समझा, जब वह कहता है उत्पत्ति की पुस्तक 50 अध्याय उसके 20 पद में, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात को भलाई का विचार किया था। दोतान में अग्निरथ है और वे भिन्न रूप से काम में आएंगे। मित्रों, हम आगे देखते हैं। अरामी सैनिक अंधे हो गए। दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय उसके 18 पद में हम पढ़ते हैं, तब अरामी उसके पास आए, तब एलिशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलिशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। मित्रों, एलिशा ने बड़ी ही असामान्य बात की। उसने परमेश्वर से याचना की कि वह अरामियों को अंधा कर दे, और परमेश्वर ने किया। तब वह उन्हें सामरिया ले गया। उसने उनसे कहा कि वह उन्हें एलिशा के पास ले जा रहा है। सामरिया पहुंचकर उसने उन्हें इसराइल के राजा को सौंप दिया। राजा उन्हें घात करना चाहता था, परंतु एलिशा ने कहा, ऐसा मत करो, उन्हें भोजन खिलाकर लौटा दे। दूसरे राजाओं के पुस्तक 6 अध्याय के 23 पद में लिखा हुआ है, तब उसने उनके लिए बड़ी जेवनार की, और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद आराम के दल इसराइल के देश में फिर ना आए। मेरे प्रियो, एलिशा द्वारा इसराइल के परमेश्वर का सामर्थ और अनुग्रह प्रकट करने के कारण आराम का राजा किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया और उसने इसराइल से युद्ध करने का विचार ही त्याग दिया। तथापि आगे चलकर बेनहदत ने सामरिया को घेरा, जैसा कि अगली घटना से विदित होगा। बेनहदत सामरिया को घेरता है। आइए हम पढ़ें दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय उसके 24 और 25 पद में, परंतु इसके बाद आराम के राजा बेनहदत ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब शोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की वीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। मेरे मित्रों, अकाल ऐसा भीषण था कि गधे का सिर, जिसमें मांस नाम मात्र का भी नहीं होता है और केवल उबाला ही जाता है, परंतु अधिक पैसों में बिक रहा था। मुद्रा स्फीति बहुत अधिक थी। अगले कुछ पद एक भयानक सत्य को प्रकट करते हैं। वे अपने ही बच्चों को खा रहे थे, क्योंकि वहां भोजन नहीं था। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय उसके 31 पद में पढ़ते हैं, तब वह बोल उठा, यदि मैं शापात के पुत्र एलिशा का सिर आज उसके धड़ पर रहने दूं, तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। मेरे प्रियो, यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है कि राजा उस घटना का दोष एलिशा को क्यों दे रहा है। संभवतः वह सोच रहा था कि एलिशा चमत्कार करके वहाँ भोजन व्यवस्था कर सकता था, क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए वह उसे फांसी देना चाहता था। मित्रों, यह घटना अगले अध्याय में भी व्यक्त है। यह एलिशा के जीवन की एक और रोमांचक घटना है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम परमेश्वर के उन अद्भुत कार्यों को देखते हैं, और हमारे लिए भी एक सीख है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करना सीख जाएं, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत है। वह असंभव को संभव कर सकता है। वह दुश्मनों और शत्रुओं से बचा सकता है, आपके रोगों से और हरेक बुराइयों से आपको बचा सकता है। क्या आप एलिशा के जीवन के कार्यों को सुन रहे हैं? जी हाँ, परमेश्वर वही है जो कभी बदलता नहीं। आज भी वह हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है, क्योंकि वह मरा नहीं है परंतु जी उठा है। वह जीवित है जो पिता की दाहिने विराजमान है, जो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता और उत्तर देता है। मेरे प्रियो, आज आइए हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के निकटता में लाएं, अपने पापों से क्षमा मांगे और उससे कहें कि प्रभु, मेरे जीवन के हर एक दोष आप दूर करें, मुझे शुद्ध करें, पवित्र करें। मैं आपकी निकटता में जीवन जीना चाहता हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे हर एक कमजोरियों से आप छुटकारा दें। निश्चय जाने प्रभु यीशु आपकी सहायता करेंगे। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
राजाओं का राजा है, विश्वास।